अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। इसी समय पुत्र की कामना से डाकुओं का सरदार जो शूद्र कुल का था, पशुतुल्य जड़ मनुष्य की भद्रकाली पर बलि चढ़ाकर उपासना करना चाहता था। तात्पर्य, निम्न श्रेणी के लोग यथा शूद्र अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए देवी काली या भद्रकाली जैसे देवियों की उपासना करते हैं। इस उद्देश्य से वे कभी कभी मूर्ति अर्चा विग्रह के समक्ष मनुष्य का वध करते हैं। वे सामान्यतः ऐसा व्यक्ति चुनते हैं जो मंद बुद्धि हो, अर्थात मनुष्य के रूप में पशु हो। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वांछाकल्पतरुभ्यश्च विवाह सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जड़ भरत का परम चरित्र। तो भरत महाराज अब इस जन्म में जड़ भरत के नाम से जाने जा रहे हैं, और वास्तव में उनको देख के ही प्रतीत होता था कि वो उनकी चेतना जड़ अवस्था में है। प्रभुपाद लिखते हैं, कोई इस प्रकार का व्यवहार करता है अगर, या तो वो पागल होता है या फिर वो मुक्त अवस्था में होता है। कोई अगर व्यक्ति पागल है तो वस्त्र ठीक से नहीं पहनता हो, उसका खाना सोना ठीक नहीं होता है, उसका व्यवहार ठीक नहीं होता। इसी तरह से एक मुक्त पुरुष भी जो देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ चुका है, वो भारी सुध-बुध खो बैठता है और ये नहीं समझ पाता कि वास्तव में भौतिक जगत में, भारी जगत में क्या चल रहा है। क्योंकि अभी भरत महाराज यानी कि जड़ भरत के रूप में परमहंस की स्थिति में है, और कोई अगर परमहंस की स्थिति में पहुंच जाता है तो देहात्म बुद्धि से पूर्ण रूप में उठ जाता है। उसका सारा ध्यान भगवान के चरणों में लगा रहता है और निरंतर भगवान का चिंतन करता रहता है, उसके लिए स्वाभाविक होता है। जैसे यहां पर पिछले श्लोक में, पिछले से पिछले श्लोक में बताया गया था जड़ भरत के बारे में, उनका शरीर सांड के समान बलिष्ठ था और उनके अंग प्रत्येक हृष्ट पुष्ट थे। उन्हें ना तो सर्दी गर्मी या बया और वर्षा की परवाह थी और ना कभी वे अपने शरीर को ढकते थे, वे जमीन में लेटे रहते थे। वे अपने शरीर में ना तो कभी तेल लगाते ना ही कभी स्नान करते थे। जैसे हमने पिछली बार भी बताया था कि बंशीदास बाबा जी महाराज भी पूरे जीवन भर उन्होंने स्नान नहीं किया, अवधूत के रूप में रहे, अवधूत अवस्था में। शरीर मलिन होने के कारण उनका ब्रह्म तेज तथा ज्ञान उसी प्रकार अप्रकट था जिस प्रकार धूल जमने से किसी मूल्यवान मणि का तेज छिप जाता है। उन्हें केवल एक गंदा कोपिन और एक काला सा यज्ञोपवीत पहन रखा था। तो यही षड गोस्वामी ने किया, कोपिन कंथाश्रिता, कोपिन और कंथा का आश्रय लिया हुआ था षड गोस्वामी ने। ये उनकी संपत्ति थी। उन्होंने केवल एक गंदा कोपिन और काला सा यज्ञोपवीत पहन रखा था, ये जानते हुए कि वह ब्राह्मण कुल में उत्पन्न है, लोग उन्हें ब्रह्म बंधु तथा अन्य नामों से पुकारते थे। इस प्रकार भौतिकवादी लोग द्वारा तिरस्कृत एवं उपेक्षित होकर वे इधर उधर घुमा करते थे। नरतनदास ठाकुर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देव स्मृति नाही जार संसार बंधन जहां तार कहां तार, मतलब शरीर पालन की बिल्कुल इच्छा नहीं रहती, अपने शरीर को ढंग से रखने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। जो किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहे वह या तो पागल होता है या मुक्त होता है। तो इस प्रकार ये परमहंस का जो पद है, परमहंस की तिथि कोई प्राप्त कर लेता है तो पूर्ण रूप में देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ जाता है, और ऐसी अवस्था में वो इस जगत का नहीं रहता, वो आध्यात्मिक जगत का हो जाता है। लेकिन यहां पे आज के श्लोक में बताया जा रहा है कि कुछ डाकू लोग एकत्रित हुए थे, और डाकुओं के जो सरदार थे वो शूद्र कुल में उनका जन्म हुआ था, और संतान की इच्छा से वो भद्रकाली को एक मनुष्य भेंट करना चाहते थे। कैसा मनुष्य? जो पशु तुल्य है, द्विपाद पशु, दो पांव में चलने वाला जानवर, जैसे कि आज के समय में, आज के समाज में अधिकांश लोग जो क्या है, पशु हैं। क्या है? पशु, दो पांव में चलने वाले जानवर। तो उन सबको बलि चढ़ानी चाहिए भद्रकाली को। भद्रकाली वैसी उनकी बलि ले रही हैं, बलि चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, तो वैसे वो बलि उनकी चढ़ाई जा रही है। जैसे ही पाठशाला में और विश्वविद्यालय में भेजा जाता है आजकल के युवाओं को, तो वास्तव में वहां पर बलि चढ़ाई जाती है ताकि आगे चलकर वो गधे की तरह काम कर सके। तो इस तरह से ये भद्रकाली को यहां पर बलि चढ़ाने की व्यवस्था ये लोग कर रहे थे। डाकू लोग, जो डाकुओं का सरदार था, उसने ये फैसला किया किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ा जाए जो बलिष्ठ हो, शक्तिशाली हो देखने में, और पशु तुल्य हो। वैसे व्यक्ति को हम क्या करेंगे? भद्रकाली को चढ़ाएंगे। काली की पूजा, दुर्गा की पूजा, ऐसी पूजा को शक्तास कहते हैं। ऐसे जो पूजा करने वाले हैं उनको शक्तास कहते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि हम भी शक्तास हैं, बट वी आर प्योर शक्तास। हम लोग शुद्ध शक्तास। प्योर शक्ता का मतलब क्या है? कि हम भगवान की अंतरंगा शक्ति है, उनकी आराधना करते हैं। महात्मानस तु माम पार्थ देवी प्रकृति माश्रिता। तो देवी प्रकृति के आश्रित होते हैं महात्मा लोग जो होते हैं। तो हम लोग भी शक्ता हैं, लेकिन शुद्ध शक्ता है। लेकिन जो शुद्ध शक्ता नहीं है वो इस प्रकार के जो भयानक रूप है, माया का जो भयानक रूप है, घासली फॉर्म जैसे कहते हैं प्रभुपाद, वो भद्रकाली का रूप है। और ये भद्रकाली का रूप जो है वास्तव में बड़ा ही भयानक रूप है। और ऐसी काली की पूजा करते, बंगाल में आप जाएंगे तो काली पूजा जो है बड़े उत्साहित पूर्वक मनाते हैं। और काली को क्या किया जाता है? पशु का भोग लगाया जाता है। पशु काट के, जानवर को काट के काली को भोग लगाते हैं और उसी का वो प्रसाद ग्रहण करते हैं, है ना। काली का प्रसाद, काली का प्रसाद क्या होता है? मांस भक्षण। जब काली को भोग लगाया जाता है तो काली क्या करती हैं? काली जो है अपने पति देव महादेव को देती हैं, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब काली को भोग लगाते हैं तो काली क्या करती हैं? उसको अपने पति को देती हैं। ये शिष्टाचार है कि सबसे पहले वो पति को दें। तो पति क्या है? महादेव हैं, वैष्णव हैं, वो स्वीकार नहीं करते हैं, वो अपनी सेना को दे देते हैं। उनकी सेना कौन है? भूत पिशाच। तो भूत पिशाच को ये भोग जाता है, पशु का भोग जो है बलि चढ़ाया गया जिसको, वो भूत पिशाच के पास जाता है ना। भूत और भूतनिया उसको उसका भोग लगाती हैं, और बदले में फिर किसका प्रसाद मिलता है? भूत का प्रसाद मिलता है। तो काली वापस में भूत का प्रसाद देती है। जय राधिका रमण की, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माने की, जय श्री कृष्ण बलराम की, जय। तो भूत का प्रसाद खाके सब भूत बन रहे हैं, सब भूत, भूत और भूतनिया घूम रही हैं इस शहर में। और भूतनी का प्रसाद खा के तो फिर वो क्या, बहुत ही ज्यादा डरावनी हो जाती है, डरावने हो जाते हैं। आज का मनुष्य बड़ा डरावना हो गया है, आज का पशु बहुत डरावना, आज का मनुष्य बहुत डरावना हो गया है, पशु से भी ज्यादा डरावना हो गया है। देखने में डर लगता है आज के मनुष्यों को, क्योंकि ये सब भूत का प्रसाद खा रहे हैं। तो इस प्रकार काली की उपासना की जाती है। एक बहुत बड़े काली के उपासक थे बंगाल में, बड़े प्रचलित हैं, प्रत्येक घर में उनका चित्र होता है, ट्रिनिटी कहते हैं उसको। तो उनका चित्र बंगाल में जाएंगे घर घर में दिखाई देगा, वही उनके लिए परमहंस है। एक थे जड़ भरत जो परमहंस थे, जिनका चित्र जिनका मन पूर्ण रूप में कृष्ण भावना भावित था, और एक ये परमहंस थे जो काली की पूजा करते थे। तो अंतकाल में क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं वही राम हूं और मैं वही कृष्ण हूं जो पहले आए थे, त्रेता युग में आए थे, द्वापर युग में आए थे, मैं वही राम हूं, मैं वही कृष्ण हूं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि कौन से ऐसे शास्त्र में लिखा है कि काली की पूजा करने से आप भगवान बन जाते हो। भगवान तो गीता में कह रहे हैं कामस्थित हृदय ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जो देवताओं की उपासना करते हैं, देवी देवताओं की उपासना करते हैं, उनका मन भौतिक इच्छाओं से दूषित है। और ये साहब कह रहे हैं कि काली की पूजा करने के बाद ये भगवान बन गए, तो ये कहां लिखा है शास्त्र में? तो इस प्रकार लोग जो है अंत काल तक जो है समाज में लोग धोखा दे रहे हैं, मरने का समय भी आ रहा है तब भी जो है वो इस उपाधि को नहीं त्याग पा रहे। मायावादी कृष्णेर अपराधी। और प्रभक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा कि ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करके पूरा बंगाल जो है नरक में जाएगा। जो इस प्रकार के व्यक्ति का अनुसरण करते हैं वो पूरा बंगाल कहां जाएगा? नरक में जाएगा। तो काली की उपासना जो है वास्तव में उन लोगों के लिए बताई गई है जो वास्तव में तमोगुण में है, ऐसे शास्त्रों में पुराणों में दिया गया। अमावस्या के दिन अर्धरात्रि के समय काली को बलि चढ़ाई जाती है। आज भी आप जाएंगे पहाड़ों में, जाएंगे उत्तरांचल की तरफ या आप दक्षिण या बंगाल की तरफ जाएंगे तो वहां पर काली को बलि चढ़ाते हैं, भैंस भैंस वगैरह काटते हैं, बहुत सारे भैंस बकरी कटते हैं और काली को भोग लगाते हैं। मदिरा पान करने वाले जो हैं वो काली को भोग लगाते हैं, है ना? यहां पर है ना पुराना किला और मंदिर है, कौन सा मंदिर है? भैरव मंदिर। तो वहां पर भी भोग लगाते हैं, मदिरा का भोग लगाते हैं, उसके बाद सब पीते हैं प्रसाद, काली का प्रसाद, भैरव का प्रसाद। और इसी तरह उज्जैन में एक है काल भैरव, वहां पर भी है। और वहां पर तो सुना है कि आवाज आती है, गुड़ 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 की आवाज आती है, तो वहां पे मदिरा का भोग लगाते हैं। तो मदिरा पीने वाले, मांस खाने वाले, इस प्रकार का जो पाप कार्य करने वाले हैं उनको लिए, उनके लिए शास्त्रों में इस प्रकार से सुझाव दिया गया है कि अमावस्या के दिन अगर वो ऐसे भोग लगाकर खाएंगे अर्धरात्रि के समय जब कोई देखता नहीं है, तो ऐसा शास्त्रों के अनुसार चलने से क्या होगा? वो फिर क्रमशः धीरे धीरे वो मांस भक्षण करना बंद कर देंगे, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार कर रहे हैं। तो मांस भक्षण करने वाले जो हैं वो इस तरह से उनके वेदों में शास्त्रों में संकेत दिया गया। अभी यहां देखिए जड़ भरत के जो और 9 भाई हैं उनके बारे में बताया गया कि वैदिक शास्त्रों में वो पारंगत थे, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अन्य वेदों में वेदों के पाठ करने में वो दक्ष ब्राह्मण थे, लेकिन भगवत भक्त नहीं थे, भक्ति नहीं थी उनके हृदय में। और दूसरी ओर जड़ भरत जो है वो वैदिक अनुष्ठानों का पालन नहीं कर रहे थे, वो कोई भी नियम का पालन नहीं कर रहे थे, कि ऐसे नियमों का पालन वो अपने पूर्व जन्म में कर चुके थे, अब तो वो भगवान के भक्त थे। तो बाहरी दृष्टिकोण से ऐसा लग रहा था कि जो
भाई हैं उनके, वो बहुत सात्विक हैं, देखने में बड़े अच्छे हैं, सत्व गुण में लग रहे हैं, और जड़ भर जो है तमोगुण में लग रहे हैं, भारी रूप से ऐसे लग रहा था। लेकिन जड़ भर, उनको क्या पता था कि जड़ भर जो है परमहंस है, इसलिए उनकी रक्षा के लिए स्वयं जो है काली प्रकट हुई और डाकुओं से बचाया। जब देखा कि जड़ भर खड़े हैं, खेत में उनको खड़ा कर दिया, खेत में किसे खड़ा किया, खेत की रक्षा कर सके। और जब डाकू जो है उठा के ले गए और बलि चढ़ाने के लिए तैयार किया गया, उनको चंदन का लेप लगाया गया, माल्यार्पण किया गया, स्नान कराया गया उनको और बलि चढ़ाने के लिए तैयारी की गई, और उस समय में जड़ भर जो है उनका पूर्ण जो है उनकी चेतना कृष्ण भावना भावित थी, भगवान के चरणों में उनका मन लगा हुआ था। और जैसे ही वो काली को भोग लगाने लगे, काली को बलि चढ़ाने लगे, तो काली स्वयं जो है प्रकट हो गई विग्रह से, और की सेना भी आ गई, भूत पिशाच की सेना भी आ गई साथ में, और उन सब ने क्या खेला, पाद कंदू खेला, फुटबॉल। आगे आप वर्णन आएगा, फुटबॉल खेला उन सब ने। सुखदेव गोस्वामी शब्द का उपयोग कर रहे हैं, पाद कंदुक, तो फुटबॉल खेला उस समय, फुटबॉल खेलते थे, उनका गला काट काट के जो है सब पांच उछाल उछाल के फेंकते थे, फुटबॉल मैच खेला था, लेकिन गोल क्या था पता नहीं, गोल कहां था ही पता नहीं, लेकिन फुटबॉल मैच चल रहा था वहां पर। और इस तरह से स्वयं काली ने जड़ भरत की रक्षा की। तो कहने का अभिप्राय यह है, जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी रक्षा देवतागण भी करते हैं, लेकिन जो देवताओं की पूजा करते हैं केवल, उनकी भगवान रक्षा नहीं करते हैं, क्योंकि हमने देवताओं का आश्रय ले लिया। इसलिए देवताओं की जो उपासना है, तो एक बार शिव जी ध्यान में लगे हुए थे, तो पार्वती उनके समक्ष खड़ी हुई थी, तो पार्वती ने पूछा, दुर्गा जी ने पूछा कि आप किसका ध्यान लगाते हैं, आप किसके बारे में सोचते हैं, आपका इन देवताओं से क्या संबंध है। तो शिव जी उत्तर देते हैं कि देवता लोग भगवान के अंश हैं और अपने अपने निर्धारित कर्म कर रहे हैं, उनको अलग अलग कार्य दिए गए हैं, किसी को वायु का विभाग दिया गया है, किसी को जल का विभाग दिया गया है, इस प्रकार से 33 करोड़ देवी देवता हैं, मुख्य रूप से 33 देवी देवता हैं और उनकी सेना है, तो इनको अलग अलग विभाग दिए गए हैं सृष्टि में संचालन का कार्य करने के लिए। और जहां तक मेरी बात है, मेरा मन तो भगवान के चरणों में लगा हुआ है, मैं भगवान विष्णु की, भगवान शंकरण की आराधना करता हूं जो चतुर्भुज रूप में है। देवता लोग जो हैं वो पूजनीय है, उपासनीय है, लेकिन भगवान जो है वो भजनीय है। तो इसलिए आप भी भगवान का भजन करो। इस प्रकार हम देख सकते हैं, और इस तरह से कई प्रकार की कथाएं हैं। चैतन्य मंगल में लोचन दास ठाकुर बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं। एक बार नारद जी जाते हैं वैकुंठ में, और वहां जाकर वो प्रार्थना करते हैं लक्ष्मी से कि आज मुझे नारायण का महाप्रसाद चाहिए। तो लक्ष्मी जी कहती हैं कि नारायण ने मना किया है, स्वामी ने मना किया है कि ये महाप्रसाद किसी को ना दिया जाए, तो आप मुझे क्षमा करें, आपको ये प्रसाद नहीं मिल सकता। तो नारद जी ने कहा मैं किसी को नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा मिल जाए, इतनी दूर से आया हूं मैं, अगर थोड़ा महाप्रसाद मिल जाएगा तो मेरा जीवन सफल हो जाए। तो लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, किसी को बताना नहीं, थोड़ा सा ले लो। तो नारद जी ने जैसे ही महाप्रसाद ग्रहण किया, भाववेश में आ गए और भावमय नृत्य कीर्तन करते हुए, वीणा बजाते हुए वो शिव जी के पास पहुंचे, शिवलोक में पहुंचे। शिव जी वहां ध्यान लगाए बैठे हुए थे, शिव जी का ध्यान भंग हो गया, और देखा नारद जी नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भाव वेश में हैं। तो क्या हुआ, आप नहीं आने का कष्ट क्यों किया, आज मुझे नारायण का महाप्रसाद मिला है, उन्होंने बोल दिया। छुपाते कुछ नहीं थे नारायण जी, मन में कुछ रख नहीं सकते, कहा आज मुझे नारायण का महाप्रसाद मिला है, हरि बोल हरि बोल। शिव जी ने कहा अकेले अकेले खाते हो, हम दोनों भाई है ना, ब्रह्मा जी से उत्पत्ति हुई है हमारी, तुम भाई हुए और अकेले अकेले खाते हो, ठीक नहीं है, थोड़ा सा तो दो मुझे। तो नारद जी ने फिर शिव जी को दिया, तो शिव जी ने खूब मजा से महाप्रसाद ग्रहण किया, वो भी नृत्य करने लगे। और जब पार्वती ने देखा शिव जी को इस प्रकार नृत्य करते हुए, भाववेश में नृत्य करते हुए, कीर्तन करते हुए, तो वो घबरा गई। उनको लगा प्रलय का समय तो आया नहीं, ये इस प्रकार उद्दंड नृत्य क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है कि हे महादेव आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या हुआ आपको। नारद जी आए, देखा नहीं आज ये वैकुंठ से नारायण का महाप्रसाद लेके आए, लेकिन तुम्हारा इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, तुम भगवान की बहिरंगा शक्ति हो, ये दिव्य महाप्रसाद है ना। तो दुर्गा जी बहुत परेशान हो गई, तो उन्होंने भगवान से भगवान से प्रार्थना की कि क्या मुझे आपका प्रसाद नहीं मिल सकता, मैं क्या इतनी निकृष्ट हूं। तो उन्होंने घोर तपस्या की और दुर्गा जी ने भगवान को प्रसन्न किया, भगवान प्रकट हुए। चिंता ना करो देवी, कली काल में मैं इस पृथ्वी लोक में प्रकट होऊंगा, जगन्नाथ के रूप में सब मेरी आराधना करेंगे और सबसे पहले महाप्रसाद तुम्हें मिलेगा। बिमला देवी के नाम से जाने जाते हैं जगन्नाथपुरी में, इसलिए सबसे पहले जगन्नाथ जी का महाप्रसाद जो है वो बिमला देवी को मिलता है, इसलिए उस प्रसाद को बिमला प्रसाद कहते हैं, बिमला प्रसाद। तो बिमला देवी का प्रसाद जो है वो महाप्रसाद। तो भगवान को अर्पित करने के बाद जब देवी देवताओं को दिया जाता है वो महाप्रसाद है, उसको स्वीकार करना चाहिए। भुवनेश्वर में जो लिंगराज महादेव हैं, ऐसा स्कंद पुराण में और अन्य पुराणों में लिखा गया है कि जगन्नाथ जी का दर्शन करने से पहले लिंगराज महादेव का दर्शन करना चाहिए। वो द्वारपाल हैं, क्षेत्रपाल हैं, तो अभी तो प्रथा उन्होंने बदल दी है, लेकिन जो प्राचीन प्रथा रही है वो ये रही है कि सबसे पहले जगन्नाथ जी को अनंत वासुदेव, वहां अनंत वासुदेव का मंदिर है, तो सबसे पहले उनको भोग लगता है, यानी कि विष्णु को भोग लगने के बाद फिर लिंगराज महादेव के पास आता है। और लिंगराज महादेव का जो महाप्रसाद है वो वैष्णव ग्रहण करते हैं। तो कंसेप्शन क्लियर होना चाहिए, कंसेप्शन ये है कि शिवजी वैष्णव है और शिवजी को अगर मैं भोग लगाता हूं इस उद्देश्य से कि शिवजी उसको आगे भगवान को अर्पित करेंगे तुलसी दल डाल के, तो ऐसा जो प्रसाद है वो महाप्रसाद है, उसे वैष्णव भी स्वीकार करते हैं। लेकिन कोई इस विचार से अगर शिवजी को भोग लगाता है कि शिवजी स्वतंत्र हैं और इनमें और भगवान में कोई भेद नहीं है, और विशेष रूप से ये विचार कि वो स्वतंत्र हैं, तो वो जो है प्रसाद स्वीकार नहीं किया जाता है वैष्णव के द्वारा। लेकिन अधिकांश जो देवी देवताओं के उपासक होते हैं, ठाकुर भक्तिनाथ कहते हैं, वो मायावादी होते हैं। उनका यही विचार होता है कि देवी देवता क्या है, स्वतंत्र है भगवान से अलग, इसलिए वैष्णव लोग जो है देवी देवताओं का प्रसाद स्वीकार नहीं करते। तो यानी कि हमारा जो विचार है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसी एक घटना बताई गई है ऐसे एक पुराण में, नरसिंह पुराण में, एक राजा था वो शिव जी का भक्त था, तो किसी कारणवश जो है वो बीमार हो गया बहुत, और उसने एक ब्राह्मण को कहा कि आज आप शिव जी की पूजा करें, उनको भोग लगाएं। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो विष्णु का भक्त हूं, अब मैं शिव जी की पूजा करना भी चाहूं तो मेरा मन तो लगेगा नहीं उसमें, तो उसने मना कर दी। राजा ने कहा अगर तुम मना करोगे तो तुम्हारा क्या है, गर्दन उड़ा दूंगा, तो सोच लो क्या करना है। तो ब्राह्मण चारा डर गया, उसने कहा ठीक है अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं स्वीकार करता हूं आपका आदेश। तो ब्राह्मण जो है वो शिवलिंग की फिर पूजा करने लगा, शिवलिंग की पूजा करने लगा, और लेकिन जैसे उसने मंत्र का उच्चारण किया श्री नरसिंगा जय नरसिंगा जय जय नरसिंगा, इस रात प्रार्थना की। तो राजा को पता चला ये तो शिव जी की आराधना कर रहा है, पूजा कर रहा है, लेकिन ये तो विष्णु मंत्र का उच्चारण कर रहा है। तो राजा को बड़ा क्रोध आया और राजा ने अपनी तलवार निकाली इस ब्राह्मण को मारने के लिए। और जैसे तलवार से आक्रमण किया ब्राह्मण को मारने के लिए, तो शिवलिंग से भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए। उसी शिवलिंग से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। तो ये शिवलिंग अभी भी है दक्षिण भारत में, जहां पर यह घटना हुई थी। स्फोटा नरसिंह स्फोटा लिंग उस शिवलिंग का नाम है। तो उसमें से भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए शिवलिंग से। तो इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए, विशेष रूप से शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो कई बार, या फिर दुर्गा जी के मंदिर भी जाते हैं। दुर्गा जी को भी वैष्णव लोग श्रीमती राधारानी के रूप में देखते हैं, योग माया के रूप में देखते हैं, क्योंकि कात्यानी व्रत किसने रखा था? गोपियों ने रखा था, वो योग माया है। और कृष्ण को अपने पति के रूप में वो चाहते थे। तो देवी देवताओं के निश्चित रूप से हम लोग स्वतंत्र रूप से आराधना या पूजा नहीं करते हैं, लेकिन अगर उनका संबंध भगवान से है, अगर ये विचार है, रहता है हमारा, तो वो भी वास्तव में पूजनीय हो जाते हैं और उस आराधना में किसी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए। तो इस प्रकार इस बात को समझना होगा। तो काली के उपासक जो होते हैं वो अधिकांश तमोगुण में होते हैं, और इस प्रकार पाप कार्य में रत रहने के लिए वो करते हैं। अब शास्त्रों में इस प्रकार से क्यों दिया गया है, तो शास्त्र भी जो है वास्तव में प्रचार कर रहे हैं। अभी क्या होता है कि इस्लाम में क्या होता है, इस्लाम में भी बताया गया कि बकरी ईद जब आता है, विशेष रूप से ईद मनाते हैं वो लोग, तो वैसे रोज ही खाते हैं अब, है ना। लेकिन कुरान के अनुसार जब बकरी को बकरी की बलि चढ़ाई जाती है, ना बकरी की बलि चढ़ाई जाती है, तो कुरान में लिखा गया है उसमें निर्देशन इस प्रकार से है कि बलि चढ़ाने वाला व्यक्ति जो है वो अपने को और उस बकरी को दोनों को ढक लेता है कपड़े से, और बलि चढ़ाने वाला व्यक्ति जो है उस बकरी की आंख में घूर घूर के देखता है, उसको देखना होता है। और फिर कुरान से कुछ उच्चारण किए जाते हैं और इस प्रकार से उच्चारण करते हैं और घूर के देखा जाता है, और बहुत धीरे धीरे गर्दन को काटना होता है, बहुत धीरे धीरे उसकी आंखों में घूरते हुए, उसकी आंखों को देखते हुए, और साथ में कुरान से पाठ किया जाता है। तो ऐसा करने से क्या होगा, इस प्रोसेस को फॉलो करने से क्या होगा कि वो धीरे धीरे घबराएगा, धीरे धीरे वो समझेगा कि वास्तव में ये पाक नहीं है, ये नापाक है, ये पाप का कार्य है। तो इस प्रकार वो बलि चढ़ाना फिर बंद करेगा। तो कुरान हो या हमारे वैदिक शास्त्र हो, ये वास्तव में ये सब वैदिक शास्त्रों का एक भाग है, और ये हमें शिक्षा देता है कि अगर हमें वास्तव में इन पाप कार्यों से बचना है तो वैदिक शास्त्रों के अनुसार हमें चलना है। कोई मांस भक्षण करना भी चाहता है तो इस प्रकार उसको बलि चढ़ानी होगी। और बलि चढ़ाते वक्त क्या होता है, हमारे शास्त्रों के अनुसार कैसे बताया गया है, जब काली को अमावस्या के दिन जब भोग लगाया जाता है तो मंत्र का उच्चारण करते ब्राह्मण लोग, और जो खाने वाला व्यक्ति है वो ये नहीं जानता है इस मंत्र का अर्थ क्या है, क्योंकि वो तमोगुण में है और ब्राह्मण मंत्र का उच्चारण करता है, क्योंकि वो वैदिक शास्त्रों के मंत्रों को सुन रहा है तो उसके हृदय में जिज्ञासा जागृत होती है, वो प्रश्न पूछता है इन मंत्रों का अर्थ क्या है, ये मांस का अर्थ क्या है। ये मांस का अर्थ यह है कि इस जन्म में आप बलि चढ़ा रहे हो, अगले जन्म में ये आपको बलि चढ़ाएगा। जब उस अर्थ को सुनता है तो वो फिर घबरा जाता है कि मेरे साथ भी ऐसे ही होगा, तो फिर वो क्या करता है, पीछे हट जाता है और इस प्रकार से वो बलि चढ़ाना बंद कर देता है, मांस भक्षण से छुटकारा पाता है। तो ये प्रचार का तरीका है। जैसे हमारे पास भी कई बार कई लोग आते हैं, कुछ चेन स्मोकर्स होते हैं, कुछ नशा करते हैं, तो उनको अगर हम कहें कि कि आप जब तक सिगरेट नहीं छोड़ेंगे तब तक आप मंदिर में नहीं आ सकते, तो उसका मतलब प्रचार हमारा बंद, कोई मंदिर नहीं आ सकता। नहीं तो प्रचार का तरीका क्या है? ठीक है आप चेन स्मोकर हैं, आप 10 सिगरेट पी लीजिए, लेकिन चेन स्मोकर मत रहिए, और साथ में आप हरि नाम लीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा करने से क्या होगा? हरि नाम लेने से, हरि नाम की शक्ति से वो इस पाप कार्य से पूरा छुटकारा पाएगा। जिस तरह से प्रभुपाद ने किया, प्रभुपाद ने उन्हीं पीस को ये नहीं बोला कि ड्रग्स छोड़ो तभी मेरे पास आ सकते, कोई अमेरिकन फिर भक्त नहीं बनता वहां। प्रभुपाद ने उनको हरि नाम दिया, उनको प्रसाद खिलाया, उनको प्रेम दिया, उनकी सेवा की। वो नशा करते थे फिर भी उनकी सेवा की प्रभुपाद, और ऐसे वो लोग पवित्र हुए, शुद्ध हुए। तो इस प्रकार ये वैदिक शास्त्र जो है बहुत ही वैज्ञानिक रूप से इसकी रचना की गई है वेद व्यास जी के द्वारा। जैसे कर्मशा जो है जो तमोगुण में है वो पुराणों का सहारा लेते हैं, जो तमोगुण के लिए है तामसिक लोगों के लिए है, फिर क्रमशः उनका जो विकास होता है वो रजोगुण में आते हैं, ऐसे पुराण हैं उन लोगों के लिए जो रजोगुणी लोगों के लिए हैं, फिर उसके बाद वो सत्वगुण में आते हैं, उन पुराणों का सहारा लेते हैं जो सत्वगुण की शिक्षा देते हैं, और अंततः फिर श्रीमद् भागवत पुराण का आश्रय लेते हैं। लेकिन ऐसे क्रमशः विकास की आवश्यकता नहीं है कलयुग में कि हम पहले जो है तामसिक पुराण पढ़ेंगे, उसके बाद रासिक पुराण पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ेंगे। इसका उद्देश्य नहीं है, इसका निष्कर्ष ये नहीं है। ये भागवत विधि इतनी सुलभ है कि आप सीधे ही इसको लोगों को दे सकते हैं। भागवत विधि पुराण, विशेष रूप से पुराणों का उच्चारण करने के लिए हमें ब्राह्मण बनने की आवश्यकता नहीं है। वैदिक मंत्रों को पढ़ने के लिए ब्राह्मण बनना पड़ता है, विद्वत्ता की आवश्यकता होती है। आपको पता होना चाहिए कि वैदिक शास्त्रों में दिया क्या है, उसके मीटर्स क्या हैं, उन मंत्रों का उच्चारण किस तरह से करना चाहिए, कितना खींचना है कितना नहीं खींचना है वैदिक मंत्रों के उच्चारण, इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन पुराणों में ऐसा नहीं है, आप कैसे भी इसका उच्चारण करें, एक अक्षर भी अगर आप बोलते हैं श्रीमद् भागवत का, अगर पूरे क्लास में भी नहीं बैठते हैं या पूरे क्लास में सो भी जाते हैं तब भी इसका लाभ मिलेगा। भागवत में केवल भागवत कक्षा में केवल बैठने मात्र से जो है लाभ मिलेगा, मन कहीं और है हमारा भटक रहा है, लेकिन फिर भी इसका लाभ मिलेगा। तो श्रीमद् भागवत जो है अमल पुराण है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती न इष्ट की। तो इसलिए श्रीमद् भागवत पर इतना जोर दिया गया है कि श्रीमद् भागवत जो है हर प्रकार के कलमश को दूर करेगा। श्रीमद् भागवत जो है हर प्रकार के लोगों के लिए, किराट पुलिंद पुलकशा आभीर यमुना खसादया, तो ये सबके लिए है, हर प्रकार के लोग के लिए। शूद्र क्या, शूद्र से भी जो अधम लोग हैं, मलेच्छ हैं, यावन हैं, चंडाल हैं, सबके लिए श्रीमद् भागवत है। औषधि, यह औषधि का कार्य करता है श्रीमद् भागवत। तो श्रीमद् भागवत का जो आश्रय लेता है वो फिर हर प्रकार के कलमश से छुटकारा पाता है। तो परमहंस की स्थिति विदय जड़ भरत, और इसलिए पिछली बार भी हमने चर्चा की थी कि जिस तरह से गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज या बंसीदास बाबा जी महाराज या ऐसे कई वैष्णव हुए प्राचीन समय में या कुछ सैकड़ों वर्ष पहले, जिनको देखने में ऐसा लगता था कि ये तो वैष्णव ही नहीं लग रहे देखने में, या पुंडरीक विद्यानिधि जिन्होंने बहुत ऐश्वर्य रखा हुआ था साथ, तो उनको लोग नहीं पहचान पा रहे थे। गदाधर पंडित ने भी देखा जब तो भी हैरान हो गए, ये किस तरह के वैष्णव हैं, इतना ऐश्वर्य है इनके पास, तेल लगाया हुआ है, इतर लगाया हुआ है, रेशम का कपड़ा पहना हुआ है, और ये कैसे वैष्णव हैं? वैष्णव तो विरक्त होते हैं, ये तो पूर्ण रूप से आसक्त लगते हैं। लेकिन जैसे भगवान की लीलाओं को सुना उन्होंने मुकुंद के मुख से, तो फिर वो भावेश में आ गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वैष्णव की क्रियाओं को क्रिया मुद्रा विज्ञान हो जाए, विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी जो है वो वैश्यों को नहीं पहचान सकता है। ये कई बार लगता है कि ऐसे परमहंस वैष्णव जो प्रचार के क्षेत्र में आते हैं तो वो फिर नवीन भक्तों की तरह या ऐसे व्यवहार करते हैं कि जैसे वो भी साधना कर रहे हों। तो जो प्राकृत भक्त हैं ऐसे उत्तम वैष्णवों को परमहंस वैष्णवों को नहीं पहचान पाते, क्योंकि परमहंस वैष्णवों को पहचानने के लिए परमहंस बनना पड़ेगा। कनिष्ठ भक्त जो हैं वो परमहंस वैष्णव को नहीं पहचान सकते। मध्यम अधिकारी वैष्णव जो है वैष्णव की सेवा करते हैं, इस कारण से वो परमहंस वैष्णव की सेवा में लग जाते हैं, लेकिन परमहंस वैष्णव की स्थिति क्या है, वास्तव में वास्तव की स्थिति क्या है, उसको पहचानने के लिए परमहंस वैष्णव बनना पड़ेगा। लेकिन प्राकृत वैष्णव जो है वो अगर सोचे लग जाएंगे कि ये वैष्णव क्योंकि भाव का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, ये वैष्णव रो नहीं रहे हैं, ये वैष्णव रोमांचित नहीं हो रहे हैं, ये वैष्णव जमीन में लौट नहीं रहे हैं, हमने तो चेतन चरता में इस तरह से सुना था, तो इसका मतलब ये परमहंस वैष्णव नहीं है, इन्हें हमें त्याग देना चाहिए और हमें स्वयं परमहंस बन जाना चाहिए, है ना, ताकि हमें लोग परमहंस के रूप में देखें, हम बन जाएंगे 1008 से भी ज्यादा। तो ये सब हो रहा है समाज में, तो इस प्रकार से बहुत सावधान रहना चाहिए कि वैश्यो को हमें भारी दृष्टिकोण से नहीं देखना है, भारी दृष्टिकोण से नहीं देखना है। कोई अच्छा प्रवचन दे रहा है या कोई अच्छा कीर्तन कर रहा है, इसका अर्थ यह नहीं है कि वो परमहंस वैष्णव है, वो हो भी सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए भक्ति जो है वो प्रदर्शन के लिए नहीं है, भक्ति जो है वो एक दिखावा नहीं है, भक्ति ये कोई स्टेज शो नहीं है, रॉक शो नहीं है कि भाव का प्रदर्शन नहीं हो रहा है, ये कीर्तन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, इनको रिजेक्ट कर दो, ये ठीक प्रवचन नहीं दे पाते हैं, ये वैष्णव नहीं है। कैसे पहचानेंगे वैष्णवों को, उनकी सेवा से। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बोला, नामे रुचि जीव दया वैष्णव सेवन, यही छाड़ी धर्म नहीं सुन सनातन। नाम में कितनी रुचि है, वैष्णव की सेवा करने का कितना भाव है, सेवा की भावना कितनी है, सेवा की भावना से पता चलता है सेवा भाव। इसलिए जो षट गोस्वामी जो वृंदावन में गए तो वहां पर वो वैष्णव की सेवा कर रहे थे, सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ये सब वैष्णव की सेवा में लगे हुए थे, वैष्णव की सेवा में लगे थे। जीव गोस्वामी ने श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद प्रभु, नरोत्तम दास ठाकुर, इनको भेजा कि आप इन ग्रंथों को आप वितरित करें, ब्राह्मणों को दें और भी इसकी प्रतियां बनाएं ताकि इसका वितरण हो सके। तो फिर श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु निकले बंगाल के लिए, उड़ीसा के लिए। श्यामानंद प्रभु उड़ीसा की तरफ जा रहे थे, इस तरह से श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर बंगाल की तरफ जा रहे थे। तो तीनों एक साथ निकले पहले तो। जब वो विष्णुपुर नाम के राज्य में पहुंचे तो वहां के जो राजा थे, राजा वीर हमीर नाम था उनका, वो राजा भी थे और डाकू भी थे, रात के समय डाकू थे, दिन के समय राजा थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्रंथों की चोरी करवा ली, ये सोच के नहीं कि ग्रंथ है, उनसे इतना बड़ा ठेला है, बहुत सारा सामान लगता है, इसमें लगता है हीरे जवाहरात हैं, गहने हैं। तो डाकू ने क्या किया, उसको चुरा लिया, ये जब विश्राम कर रहे थे। तो जैसे ही वो जागे बहुत चिंतित हो गए कि गोस्वामी ने इतनी मेहनत करके रात को जाग जाके इन ग्रंथों की रचना की थी और ये चोरी हो गई, हम क्या मुंह दिखाएंगे श्रील जी गोस्वामी को। तो नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु को कहा श्रीनिवास आचार्य ने कि आप जाएं, मैं इसको ध्यान रखता हूं, मैं ढूंढूंगा इसको, यहीं पर रहता हूं मैं और पता लगाता हूं, राजा से इसकी सहायता लूंगा। तो राजा के पास जाते हैं, तो राजा क्या करता है, राजा जब देखता है श्रीनिवास आचार्य जब राजमहल पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि वहां पर कथा चल रही है, रसिक कथा चल रही है, और बड़े बड़े तथाकथित रसिक वहां पहुंचे हुए हैं और रस भाष्य दे रहे हैं अपना अपना। तो श्रीनिवास आचार्य ने कहा, ये सब क्या बकवास हो रहे हैं आप, ये गलत भाष्य दे रहे हैं सब अपना। तो श्रीनिवास आचार्य ने जब बोलना शुरू किया तो राजा एकदम से मुग्ध हो गए। मैंने कहा, वाह क्या टीका दी है, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप यहीं पर रहिए और प्रतिदिन कथा सुनाइए मुझे। उन्होंने कहा ठीक है, तो कथा सुना शुरू किया। उन्होंने कहा कि अगर मैं राजा की ऐसी सेवा करूंगा तो राजा निश्चित रूप से हमारी सहायता करेगा और हमें ग्रंथ प्राप्त हो जाएंगे। तो प्रत्येक दिन जो है राजा कृष्ण कथा सुनने लगा। श्रीनिवास आचार्य के मुख से श्रीनिवास आचार्य को महाप्रभु का आवेश बताया जाता है, आवेश अवतार। तो श्रीनिवास आचार्य ने कृष्ण कथा सुनाई, राजा का हृदय पिघल गया और राजा ने कहा कि जो चाहिए आपको मांगो, मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूं। आप कहा कि हमारे ग्रंथों की चोरी हो गई, डाकू लोग चोरी करके ले गए, हम विश्राम कर रहे थे रात्रि को, वो चोरी करके ले गए। तो राजा समझ गए कि उन्हीं के लोग थे। तो फिर राजा ने सहायता की और फिर खजाना खोला गया तो देखा गया वहां पे ग्रंथ ही ग्रंथ रखे हुए हैं। उस कपड़े को जब हटाया गया तो ग्रंथ ही ग्रंथ। तो इस तरह से श्रीनिवास आचार्य को पुनः वो ग्रंथ प्राप्त हुए। तो इस प्रकार देखते हैं कि कई बार चोर हो चुके और डाकू लोग जो हैं भक्तों के ऊपर आक्रमण करते हैं, या कई ऐसे लोग होते हैं वो भक्तों को पीटते भी हैं जो प्रचार करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में हम विदेशों में देखते हैं, खासकर रूस में कितना संघर्ष करना पड़ा भक्तों को। उनको साइबेरिया के जेल में भेजा गया, वहां से एक बुक भी पब्लिश हुई, सॉल्टेड ब्रेड है कि नहीं, आपने पढ़ा होगा। तो किस तरह से उनको कष्ट पहुंचाया गया, तड़पाया गया, रबर के बैटन से, क्योंकि बैटन कहते हैं रबर का बैटन, उससे पांव के तलवे पर मारा गया, लिटा लिटा के। क्यों? क्योंकि ये भक्त लोग भगवद गीता का वितरण कर रहे थे, उनको इंजेक्शन दिया जाता था और 6-6 महीने तक जो उन्होंने केवल ब्रेड खाया, जो सड़ा सूखा एकदम, और उन भक्तों ने क्या किया, उसी में से मनका बनाकर उसमें ये लोग क्या करते थे, अपना जप पूरा करते थे, हरि नाम लेना नहीं छोड़ा उन्होंने। तो ऐसा नहीं कि हरिदास ठाकुर के साथ ही ऐसा हुआ था, 22 बाजारों में कोड़ों के साथ पीटा गया था। आज के समय में भी भक्तों को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। यहां तो इस देश में पुस्तक वितरण करना, प्रचार करना बहुत आसान है, लोग स्वागत करते हैं माला से, आइए आइए जूस पियेंगे पानी पियेंगे, फिर भी हम लोग प्रचार नहीं करते जितना हमें करना चाहिए। लेकिन विदेशों में वहां पे आप जिसको प्रचार करेंगे वो थोड़ी देर के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप तो दीवार से बात कर रहे थे, कोई आपकी बात को सुनना ही नहीं चाहे। जैसे अभी एक हमारे बीबीटी के ट्रस्टी आए थे सत्यनारायण प्रभु, जिनका एरिया जापान और कोरिया और मिडिल ईस्ट, वहां पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इनको इम्पॉसिबल प्लेसेस हैं। तो उन्होंने कहा कि आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स भेजिए कोरिया और जापान में, हमारी थोड़ी मदद करें बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इम्पॉसिबल टास्क है, चाइना में, जापान में, कोरिया में, ऐसे देशों में, चंडाल देश जिनको कहा जाता है, वहां पे ग्रंथों का वितरण करना इम्पॉसिबल है। हमारे एक महाराज गए थे, चाइना गए थे, अभी की बात है, हाल ही की बात है, चाइना गए एयरपोर्ट में, हालांकि वो नॉर्मल कर्मी ड्रेस में गए, लेकिन वॉशरूम में गए वो तिलक लगाने के लिए। तिलक तो वहां लगा ही नहीं रहा चाहिए, लेकिन तिलक लगा लिया उन्होंने, वॉशरूम में जाके तिलक लगा लिया, और वहां के जो लोकल पुलिस को पता चल गया कि तिलक वाले तो वही हैं शायद, तो उन्होंने उनको, महाराज को, एयरपोर्ट से वापस भेज दिया इंडिया, चाइना में घुसने नहीं दिए। तो इतने वो लोग स्ट्रिक्ट, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि चाइना इज एथिस्टिक कंट्री, चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हम किसी धर्म पे और विश्वास नहीं करते। बौद्ध धर्म को इसलिए हमने जगह दी हुई है क्योंकि वो लोग बौद्ध धर्म के नाम पर क्या है, अधर्म का ही प्रचार कर रहे हैं, है ना, तो उनके लिए ठीक है रहो। तो कहने का मतलब यह है कि कितना कष्ट उठाना पड़ता है भक्तों को। जड़ भरत को देखिए, यहां पर डाकू लोग पकड़ के ले गए भद्रकाली को बलि चढ़ाने के लिए, और आज के समय में भी तो हो रहा है, ये तो परमहंस है, लेकिन आज के भक्त जो परमहंस की स्थिति में नहीं है उनको भी कितने प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो महाप्रभु के सांत्वन में अगर थोड़ा भी कोई कष्ट उठाएगा तो महाप्रभु ऐसे भक्तों को भूलते नहीं है, उनके ऊपर विशेष कृपा होती है। बहुत बहुत ही कठिन है पाश्चात्य जगत में प्रचार करना, तो इसलिए प्रभुपाद ने बोला कि विदेशी भक्तों को कम से कम 6 महीने बिताना चाहिए भारत में आकर, क्योंकि बड़ा मुश्किल है वहां पर साधना ना, माया का इतना प्रभाव है, काली भद्रकाली की पूरी कृपा है विदेशों में, भद्रकाली की माया देवी की पूरी कृपा है। आप विदेशों में जाएंगे तो भक्तों ठाकुर ने कहा है कि अगर आप प्रचार के उद्देश्य नहीं जाते हैं विदेश में तो एक एक कदम में आप पाप अर्जित कर रहे हैं वहां, जैसे ही देश से बाहर आप कदम बाहर रखते हैं एक एक कदम में आप पाप अर्जित कर रहे हैं। और इस देश के बारे में क्या बताया गया है, कार्तिक मास में आप एक एक कदम रखते हैं किसी विष्णु के मंदिर में परिक्रमा करते हुए, एक एक कदम आप चलते हैं वो एक एक कदम वैदिक यज्ञ के समान है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में कोई कार्तिक मास में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भाग लेता है तो एक एक कदम में जो आप वैदिक यज्ञ कर रहे हैं ये कार्तिक महात्म्य है। कार्तिक मास में जगन्नाथ रथ यात्रा में भाग लेने का महत्व है। जगन्नाथ जी के रथ के सामने दाएं बाएं आगे पीछे कोई चलता है रथ को खींचते हुए, तो अगर वो चंडाल भी है तो उसको वैकुंठ में भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। लेकिन कोई ब्राह्मण है अगर रथ यात्रा में भाग नहीं लेता है कार्तिक महात्म्य लिखा है तो फिर उसको चंडाल बनना पड़ता है, वो चंडाल बन जाता है। लोग सोचते हैं रथ यात्रा में क्या जाने की क्या जरूरत है, तो ये जगन्नाथ रथ यात्रा की महिमा है कार्तिक मास में। तो कहने का अर्थ ये है, कहने का तात्पर्य यह है कि इस देश में जिन्होंने जन्म लिया है वो बड़े सौभाग्यशाली हैं। विदेशों में सब नहीं है, खाने पीने को कुछ नहीं मिलता है, हमने बताया ना काली की पूरी कृपा है वहां पर, दूध में फल में सब्जी में सब में क्या है एनिमल प्रोडक्ट है। जैसे सेब है, अगर अमेरिका में आप एप्पल्स खरीदते हैं तो वहां पर लीचेस पाउडर लगा जाता है सेब के ऊपर, लीचेस नाम का कीड़ा होता है लाल रंग का, उसका पाउडर बना के सेब के ऊपर लगाते हैं तो क्रिकेट बॉल की तरह चमकता है वो, वैसे केमिकली इंजेक्टेड भी होता है और ऊपर लीचेस का पाउडर भी लगाते हैं बिल्कुल शाइन करता है, और लोग उसको सोचते हैं कि वेजिटेरियन फूड है। दूध में फिश का ऑयल मिलाते हैं, क्या खाओगे आप, है ना। और चाइना में तो केक्स में भी कीड़े मकोड़े डाले जाते हैं। साउथ जो चाइना है सदर्न पार्ट ऑफ चाइना का, वहां जो है मैक्सिमम जो है डॉग ईटर्स हैं, कुत्ता खाने वाले लोग, चंडाल का मतलब यही होता है। सबसे फेवरेट उनका जो डिश है वही है डॉग मीट। तो ये यहां पर यही बताया गया कि पशु तुल्य जड़ मनुष्य, है ना, तो पशु भी ऐसा नहीं करते जो मनुष्य कर रहा है। पशु अपना भोजन खाता है लेकिन मनुष्य अपना भोजन नहीं खा रहा, कितने दुख की बात है ना। और आज बलि के नाम पर जो है रोज ही पशु हत्या हो रही है, 60,000 पशुओं को मारा जा रहा है रोज, 60,000 कैटल्स आर किल्ड एवरी डे रोज, और 20,000 ऐसे जो पशु हैं गाय बैल वगैरह हैं वो मार के कहां मारने के लिए कहां भेजते हैं, बांग्लादेश भेज रहे हैं। और अमेरिका यूरोप जैसे देशों में तो गाय को जो है जिंदा मारा जाता है, खोलते हुए पानी डालते हैं उसके ऊपर, उबलता हुआ पानी डालते हैं जीते हुए, और उसके खाल को निकाल के गाड़ी में बैठने के लिए बहुत सुंदर सीट बनाई जाती है और उस गाड़ी में बैठ के लोग जाते हैं, कितना कंफर्टेबल है, लग्जरी कार है, शरीर छोड़ने के बाद पता चलेगा कितनी लग्जरी है। तो इतनी बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है, हर जगह चमड़ा यूज किया जाता है। अभी आप जाएंगे प्रगति मैदान में तो वहां पर अभी वहां फेयर लगा हुआ है, क्या लगा फेयर मेला क्या लगा हुआ है, लेदर का, लेदर प्रोडक्ट्स का वहां पर अभी वहां पे एग्जीबिशन चल रहा है। बताइए, बेजुबान जानवरों को मारकर उनकी हत्या करके किस प्रकार से मारा जाता है। अगर आप देखेंगे, एक आपने देखा वो मीट योर मीट, मीट मीट योर मीट, तो किस तरह से स्लॉटर हाउसेस में मारा जाता है जानवरों को। और ऐसे स्लॉटर हाउसेस के लिए गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है, लाइसेंस दे रही है कि लोग स्लॉटर हाउसेस खोलें और जानवरों को मारा जाए। जो आप साबुन का इस्तेमाल करते हैं, गरम गरम पानी में नहाते ठंड में और फर्स्ट क्लास साबुन लगाते हैं कि चमकेंगे आप, उसमें एनिमल फैट है, चर्बी चर्बी डाली जाती है जो साबुन का आप इस्तेमाल करते हो। साबुन के नाम नहीं बताएंगे आपको, लेकिन कई आयुर्वेदिक साबुन भी आ रहे हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो महंगे महंगे साबुन होते हैं उस सब में जानवरों की चर्बी है जो अपने शरीर को चमकाने के लिए लगाते हैं। शरीर हमारा चमकता है लेकिन बाद में क्या होगा, कुछ और होगा। तो कहने का मतलब यह है कि पशु हत्या करते हैं उनको महारौरव नरक में डाला जाता है और वहां पर उबलते हुए तेल में डाला जाता है, और वहां पे वो जानवर, जिन जानवरों को हमने मारा, वो सारे जानवर जो हैं नोच नोच के खाते हैं। मरता नहीं है व्यक्ति, उसको नोच नोच के खाते हैं। चील भी होते हैं, कुत्ते भी होते हैं, सब होते हैं, सारे जानवर होते हैं, सब नोचते हैं, ऐसे ऐसे नोच नोच के खाते हैं। महारौरव नरक में मांस भक्षकों को भेजा जाता है। तो इस प्रकार बहुत बुरी हालत है, और अगर इस देश को बचाना है तो हमें रक्षा करनी पड़ेगी, गायों की रक्षा करनी पड़ेगी। गाय देखिए खाती क्या है, घास, और देती है आपको दूध, और हम क्या करते हैं, गाय को ही मार देते हैं। तो बहुत बुरी हालत है। और बलि के नाम पर जो है इन तर्पण के लिए, धन के लिए, धन के लालच से ही ये सारा कार्य हो रहा है। आज पूरे भारतवर्ष में अगर लोग बलि चढ़ा रहे हैं, और बलि नहीं, मार रहे हैं, पशु की हत्या कर रहे हैं, वो किसके लिए, धन कमाने के। अभी फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है बीफ का, जानते कौन सा कंट्री है, हमारे देश। और कोई जैन है वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इंडिया का, बीफ का एक्सपोर्टर, बीफ जानते ना आप। आप बाहर के जहां फॉरेन एयरलाइंस में जाएंगे, कहीं भी आप जाएंगे इंडिया से बाहर, तो आपको हर एयरलाइन में, इंटरनेशनल एयरलाइन में बीफ मिलेगा खाने का। बीफ यानी कि गोमांस, तो उसमें गोमांस में जितने भी बाल हैं, उतने जन्म लेने पड़ते हैं और उतनी बार हमें भी काटा जाएगा। अब जानवरों को छोड़िए, अब तो माताओं के गर्भ में बच्चों को ही मार देते हैं और उसको खाते हैं, फीटस को खाते हैं, जिस बच्चे ने जन्म नहीं लिया है उसको मार के खा लेते हैं। ऐसे कई कंट्रीज हैं, तैवान में आप जाएंगे, कोरिया में जाएंगे, वहां पे मिल जाएगा वो फीटस फूड, लोग खाते हैं उसको। तो ये तो राक्षस समाज बन गया है, है ना, पशु समाज भी नहीं हमारा है। पशु समाज तो फिर भी बेटर है, वो ज्यादा सिविलाइज लगता है। जंगलों में जाना ज्यादा सेफ हो गया है, शहर ज्यादा खतरनाक हो गए हैं, कॉन्क्रीट जंगल जो है ज्यादा खतरनाक है आज के समय में। इसलिए बोला गया भागवत में कि कलयुग में ऐसा समय आएगा लोग शहरों को छोड़कर जंगलों की ओर भागेंगे, कि जंगल ज्यादा सेफ होंगे। तो हम सबको इसके बारे में कुछ सोचना है, विचार करना है, केवल बातें करने से नहीं होगा, है ना, इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। और लोगों को असली यज्ञ में लगाना पड़ेगा, वो है संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन यज्ञ ही वास्तव में सभी समस्याओं का हल है। और अगर हम यज्ञ नहीं करेंगे तो फिर समाज में उत्पात मच जाएगा, क्योंकि ये लोग तो उत्पात मचा ही रहे हैं पशु हत्या करके। क्योंकि जब पशु की हत्या की जाती है तो पशु चिल्लाता है, गाय चिल्लाती है, उसकी आवाज भी जो है पूरे वातावरण में गूंजती है, वो वातावरण को दूषित करती है। तो क्या साधना करेंगे हम लोग, जब आप जप कर रहे हैं तब उस समय किसी गाय को मारा जा रहा है, इसलिए साधना भी नहीं हो रही। भक्तों से साधना नहीं कर पा रहे हैं, तपस्या क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पूरा वातावरण जो है दूषित है। ऐसे शब्द ध्वनि से जो गायों के चिल्लाने से या जानवरों के चिल्लाने से, उनके रोने से पूरे वायुमंडल में घूम रही है। इसलिए हम सबको जोर जोर से उच्चारण करना होगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। गाय की जब बलि चढ़ाई जाती थी या किसी पशु की बलि चढ़ाते थे प्राचीन समय में, तो ब्राह्मणों के पास इतनी शक्ति होती थी मंत्र उच्चारण के द्वारा, उसी समय उस वृद्ध पशु को जिसकी बलि चढ़ाई जाती थी, वो वृद्ध अवस्था में होता था, उसी समय उसको नया शरीर मिल जाता था, तो बिना कष्ट के वो पशु शरीर छोड़ता था। ऐसा नहीं कि उसके गर्दन काटते थे किसी तलवार को लेके। तो इस प्रकार के ब्राह्मण होते थे, और आजकल ऐसा कोई ब्राह्मण है नहीं। इसलिए कलयुग में इस प्रकार का जो यज्ञ है, इस प्रकार की जो बलि है, वो बना के अश्वमेधम गवालंभम, तो अश्वमेध यज्ञ और गाय की बलि चढ़ाना ये कलयुग में पूर्ण रूपेण वर्जित है। इसलिए प्रभुपाद जब विदेशों में गए तो प्रभुपाद ने कहा खाना ही है तो आप थोड़े लोअर एनिमल्स को खाइए, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि गो हत्या मत करिए, लेकिन कौन सुनता है। तो इस प्रकार ये जड़ भरत की जो कथा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हम अपने हमारा भजन आगे बढ़ रहा है, हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, इस प्रसंग से हम लोग सीख सकते हैं। कोई अपने को परमंश कहता है तो उसके बाद ये लक्षण है कि नहीं। यहां पर भरत महाराज जड़ भरत के बारे में बताया जा रहा है, इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं खाते थे, तो जो भी मिल जाता था वो खा लेते थे, तो हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते थे। तो इस प्रकार ये साधकों के लिए बड़ा ही आवश्यक है, इस प्रसंग को बार बार पढ़ना चाहिए हमें, और इस प्रकार से भगवान के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। जिस तरह से जड़ भरत निर्भर थे, उनको किसी प्रकार का भय नहीं था। भक्त का एक लक्षण भी क्या होता है, वो निर्भीक होता है, मारना है मार लो, मारो भी राखो भी, जो इच्छा तुम्हार है ना, आपको मारना है मारो, रक्षा करनी है रक्षा करो, मारे मारे कृष्णा राखे के, राखे कृष्णा मारे के, तो उनकी इच्छा होगी तो मर जाएंगे, उनकी इच्छा नहीं हुई तो शरीर छोड़ देंगे। तो इस प्रकार की श्रद्धा, इस प्रकार का अटूट विश्वास है जड़ भरत को, इसलिए वो चिल्लाए नहीं रोए नहीं कि मुझे पकड़ के ले जा रहे हैं, है ना, हमारे साथ कोई करेगा तो हम माला वाला छोड़ देंगे और समर्पित हो जाएंगे। तो परीक्षा, हर भक्त की परीक्षा होती है, यहां जड़ भरत की कितनी परीक्षा ली गई है। देखिए भरत महाराज थे, फिर वो हिरण बनना पड़ा उनको, अब वो जड़ भरत के नाम से जाने जा रहे हैं, उसमें भी उनके जो भाई हैं उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद फिर डाकू लोग आ गए उनको उठा के ले गए, वो बलि चढ़ाने वाले हैं। तो जितना हम लोग भक्ति में आगे बढ़ेंगे उतनी हमारी परीक्षा जो है बढ़ती जाएगी, उतना हमें घोर परीक्षाओं से गुजरना होगा। ये तो कुछ भी नहीं, जैसे प्रहलाद महाराज को भी इसी तरह से पहाड़ से फेंका गया, सांपों के बीच में डाला गया, जहर पिलाया गया, लेकिन प्रहलाद महाराज को कोई भय नहीं। तो इस तरह से जो कृष्ण भावना भावित होता जाता है वो देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ जाता है, तो स्वाभाविक है वो फिर भयभीत नहीं होता है। नहीं तो षट गोस्वामियों के द्वारा हमें अगर भेजा होता वृंदावन में भी जंगल, जब जंगल था वृंदावन, चारों तरफ जानवर थे, रोशनी नहीं थी वहां पर रात को, और ऐसी अवस्था में वृंदावन में षट गोस्वामी गए, लेकिन वो भयभीत थे क्या? बिल्कुल डर नहीं था उनको, षट गोस्वामियों को, निर्भीक थे वो। और हमें अगर भेजा होता तो क्या होता, हम उसी रात वापस आ जाते दिल्ली, फिर ये ना कहते कि हमें वृंदावन में भजन करना है। क्यों? जब शेर की धाड़ सुनते तो उसी समय हम पहली गाड़ी पकड़ते दिल्ली के लिए। तो हम सब जानते हैं अब अपना स्टेटस क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग क्या करते हैं, नकल करते हैं, महाजनो ये न कतहा सपनता। तो आचरण जो है हमारा बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। कोई भी अगर नकली काम करेंगे तो काली जो है वो पोल खोल देगी हमारे, यानी कि माया जो हमारी पोल खोल देगी। तो जो हम हैं वैसे रहें, और वैसे ही रहकर हम भजन करें, और इस तरह से हम लोग गुरु परंपरा को प्रसन्न कर पाए।
हरे कृष्ण।
किसी का कोई प्रश्न या कोई समीक्षा?
जी बोलिए।
प्रभुपाद ने ये कहा कि जितना मांस भक्षण होगा उतना युद्ध की संभावना बढ़ जाती है, कि मांस खाने वाले जो हैं और ज्यादा तमोगुण और रजोगुण में भर जाते हैं, और ऐसे लोग जो हैं छोटी छोटी बातों में क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि जैसा हम खाएंगे वैसा हमारा मन भी होगा, ये स्वाभाविक है। पशु हत्या करने वाले जो हैं वो आक्रामक हो जाते हैं, वही बनते हैं वास्तव में, क्या बनते हैं? आतंकवादी बनते हैं। आज तो तालिबान में वहां पर अफगानिस्तान में बचपन से बच्चों को प्रशिक्षित किया जा रहा है कि कैसे आतंकवादी बनाया जाए। नहीं, अब एक ही मंत्र का अभ्यास करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये भी वैदिक मंत्र है, कलिशंद्र उपनिषद में है, जो अथर्ववेद का एक भाग है। ठीक है, हाँ जी, हमने बताया ना कि वैदिक मंत्रों में मीटर्स की देखे जाते हैं, किस मीटर्स में उच्चारण किया जाए, कितने स्पीड में उसका उच्चारण किया जाए, एक एक अक्षर का स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए, नहीं तो उसका आपको गलत उसका प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर। तो लेकिन पुराणों के मंत्र जो हैं, आप कैसे भी उच्चारण करें उससे अब लाभ ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र है, वो चाइनीज अलग तरह से उसको प्रोनाउंस करते हैं, कोरियन अलग तरह से प्रोनाउंस करते हैं, अमेरिकन अलग तरह से प्रोनाउंस करते हैं, बंगालीज अलग तरह से प्रणाम करते हैं, होरे बोलते हैं, है ना। लेकिन भगवान हमारी भावनाओं को समझते हैं, तो ये लाभ है। ठीक है, प्रभुपाद के समय में रोज जाते थे हरिनाम में, एटलीस्ट अमेरिका में, इंडिया में मुझे पता नहीं, लेकिन अमेरिका में बताया था किसी ने, न्यूयॉर्क में रोज करीब 60 ब्रह्मचारी बस में जाते थे संकीर्तन हरिनाम के लिए और बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डेली। और लॉस एंजलिस में भी, लॉस एंजलिस में करीब 300 डिवोटीज थे और करीब 150-200 भक्त जाते थे रोज बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हरिनाम। तमाल कृष्ण महाराज की 6 बसेस थे, ग्रेहाउंड बसेस, वो करीब 200 डिवोटीज को लेके बुक डिस्ट्रीब्यूशन और हरिनाम में जाते थे डेली। कीर्तन है सदा हरी, अभी हफ्ते में एक बार कर ले वही बहुत बड़ी उपलब्धि है, है कि नहीं? तो हमारा जो क्या कहते हैं इस मिशन का जो कहते हैं एक्सपेंशन, केवल बिल्डिंग के ऊपर आधारित नहीं होना चाहिए, यज्ञ के ऊपर आधारित होना चाहिए, संकीर्तन यज्ञ के ऊपर। अगर संकीर्तन यज्ञ करेंगे तो मंदिर भी अपने आप बढ़ेंगे, मंदिर भी अपने आप एक्सपैंड होंगे, भक्तों की संख्या बढ़ जाएगी, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। ये श्रद्धा विश्वास होना चाहिए संकीर्तन में, नहीं इस अवस्था में तो मटेरियल एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा, हम परमानेंट नहीं है, और ठीक है एडजस्टमेंट ही तो कर रहे हैं आप, बट बेसिक प्रिंसिपल से वो फॉलो करना पड़ता है, भले आप प्राकृत अवस्था में है उन्नत अवस्था में। ठीक है, आखिरी प्रश्न, कौन कह, क्या कह रहे हैं, हेड काउस पता नहीं, गोहत्या के लिए मना किया है प्रभुपाद ने, भक्तों के संग में रहकर, भक्तों के संग में रहकर वी आर चेक्ड, वी आर सुपरवाइज्ड, हम लोगों को देखने वाला कोई होना चाहिए, है ना। गोपी भरतुर पद कमले और दास दासानुदास, जितना हम स्वतंत्र रहे अलग रहेंगे उतना ये संभावना बढ़ जाती है, भक्ति का प्रदर्शन बढ़ जाता है फिर। लेकिन जितना भक्तों के संग में रहेंगे वहां हमें बोलने वाला कोई होगा, टोकने वाला कोई होगा। कई बार बोलते हैं कि यहां तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है, ये भी अच्छा है, ये भी कृष्ण की कृपा है, कोई बोलने वाला तो है। अगर कोई बोलने वाला नहीं होगा, सब तारीफ ही करेंगे, तो हम सोचेंगे हमारे अंदर कोई कमी नहीं। लेकिन हमें बोलने वाले होंगे 4 लोग, तो फिर हम लोग प्रॉपर पोजिशन में रहेंगे। जैसे प्रचार करने वाले जो भक्त होते हैं उनको बहुत प्रशंसा मिलती है, माल्यार्पण होता है, बाबा होती है, है ना, प्रसाद के लिए निमंत्रण होता है। लेकिन जैसे ही वो मंदिर में भक्तों के संग में आते हैं तो कोई टांग खींचता है, कोई हाथ खींचता है, तो उसमें बैलेंस हो जाता है, है ना। अब बहुत सुन ली तारीफ, आ जाओ मीटिंग में। तो ये सारा कृष्ण का अरेंजमेंट है, हमें नहीं सोचना चाहिए कि ये तीखे भक्त हैं, बिटर डिवोटीज हैं, इनसे हमें दूर रहना चाहिए। अच्छे वक्त तो वो हैं जो हमारी तारीफ करते हैं, इसलिए ज्यादा समय उनके साथ बिताते हैं हम। किन के साथ? जो हमारी तारीफ कर रहे हैं, जो माल्यार्पण करते हैं, जो प्रसाद के लिए बुलाते हैं, वो अच्छे भक्त हैं। दे आर स्वीट डिवोटीज, नेक्टेरियन डिवोटीज। दीज डिवोटीज आर बिटर डिवोटीज, क्योंकि हमारी बुराई करते हैं, हमारा टांग खींचते हैं, हमारा पांव खींचते हैं, कोई सीखा खींचता है, कोई कान खींचता है ना। तो ये बिटर डिवोटीज हैं। लेकिन ये जो बिटर डिवोटीज हैं, वही वास्तव में हमारे हितेशी हैं, वही हमारे असली मित्र हैं, वही हमारे असली सुहृद हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे, बी वेयर ऑफ फ्लैटरर्स, मक्खन लगाने वाले से दूर रहो। ऐसे बोलते ना, कुत्तों से सावधान, वैसे मक्खन लगाने वालों से सावधान। इसलिए जब वैष्णव समाज में कोई वरिष्ठ भक्त या कोई भक्त हमारे कमियों को बताता है या हमारे पीठ पीछे निंदा भी होती है हमारी, तो समझना चाहिए कि कृष्ण की कृपा है, कि कृष्ण हमें बैलेंस कर रहे हैं, है ना, कि कहीं ज्यादा बहुत ऊंचा नहीं चले जाए हम लोग, आ जाओ नीचे वापस। तो इस तरह से एडजस्टमेंट होता रहता है अगर हम लोग भक्तों के संग में रहते हैं तो। लेकिन जैसे ही भक्तों के संग में नहीं रहेंगे और चले जाएंगे वहां पर जहाँ तारीफ सुनने को मिल रहा है, तो फिर उसके बाद तो फिर माया जो है, फिर माया, माया की बुराई से नहीं पड़ेगी, फिर वो बहुत खतरनाक है। तो हमेशा देखना, हमेशा याद रखना चाहिए, जहां पे हमारी बुराई हो रही है, जहां हमारी निंदा हो रही है, वहां हमारी स्पिरिचुअल लाइफ सबसे सेफ है। और जहां हमारी तारीफ हो रही है, जहां हमारी प्रशंसा हो रही है, जहां माल्यार्पण हो रहा है, जहां सुस्वादिष्ट व्यंजन महाप्रसाद मिलता रहता है हमेशा, वो सबसे खतरनाक स्थान है हमारे लिए। बस हो गया समय। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधिकर्मण की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद।